अच्छा, ये रमजान का महीना जा रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, अल्लाह ताला की इबादत का हक अदा नहीं कर सके इसलिए हम बैठ रहे हैं, अशरा ही क्यों? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं 4 दिन, आखिरी के 4 दिन बैठ जाऊँ, 6 दिन बैठ जाऊँ, ऐसा हो सकता है?
आप एक दिन के लिए बैठ जाइए, यानी ये जो 10 दिन है ये तो क्योंकि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम तरीका यही था, एतिकाफ के मामले में हुजूर आम तौर पर 10 ही दिन बैठते थे, तो लोग इसकी पैरवी में उसवाए हसना यही है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही है। मुसलमानों के यहाँ दोनों चीज़ें हमेशा मलहूज रही हैं, उनके पूरे इल्म का अगर आप मुताला करें, एक तरफ वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लाजिम है, क्या ज़रूरी है, क्या आदाब हैं जो हमारे लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सुन्नत कायम की है, और दूसरी जानब वो ये देखते हैं कि आपका अपना तरीका क्या था जिसको हम उसवाए हसना से ताबीर करते हैं, आपका बेहतरीन नमूना क्या था, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने की कोशिश की जाती है, वरना आप कम दिनों के लिए भी बैठ सकते हैं।
अच्छा, एक चीज़ आम तौर पर यह बयान की जाती है कि अगर आप 10 दिन के लिए बैठते हैं तो वो एतिकाफ मसनून कहलाता है, और आप 10 दिन से कम बैठते हैं तो आम तौर पर जो हमारे उलमा हैं वो कहते हैं ये नफली एतिकाफ है, ये कोई तख़सीस है ऐसी कोई शरीयत में?
वही जो मैंने आपसे अभी अर्ज़ कर दिया कि हम इबादत करते हैं तो इबादत में दो ही चीज़ें होती हैं ना, एक लाजिम इबादत है, फ़र्ज इबादत है, और दूसरे नफल इबादत, इबादत की अकसाम ये दोनों ही हैं, लेकिन अब नफल इबादत में से रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो कुछ इबादत का इंतखाब किया होगा ना, मसलन आप पर रमज़ान के महीने में तो जो रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, आम दिनों में नमाज भी तो फ़र्ज की गई, नमाज में कुछ फ़र्ज इबादतें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप जोहर की 4 रकतें पढ़ते हैं, इसके बाद आप जितने नफल चाहे पढ़ लें, तो लोगों के अंदर ये फितरी तौर पर जज्बा पैदा होता है कि वो ये जाने कि जो इख्तियार था इंसान को नफल पढ़ने का, हुजूर ने अपने इख्तियार को कैसे इस्तेमाल किया, तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी इख्तियार को इस्तेमाल किया है तो आदमी उसके करीब होने की कोशिश करता है, तो इसको उलमा मसनून की ताबीर में
मसनून की ताबीर कर। अच्छा, नमाज, ज़कात और रोज़ा, इनके बारे में कुरान बड़ा वाज़े है कि ये पिछली उम्मतों में भी थे, एतिकाफ की इबादत भी पिछली उम्मतों से साबित होती है?
यकीनन, लेकिन आप जो आपका हरम है उसकी तामीर के मौके पर यह कहा गया है कि इब्राहिम इस हरम को उन लोगों के लिए आबाद करें और अल्लाह की इबादत के लिए खास कर दें जो रुकू करने वाले हैं, सुजूद करने वाले हैं, तवाफ करने वाले हैं, एतिकाफ करने वाले हैं, तो एतिकाफ एक कदीम तरीन इबादत है, बल्कि हमारे यहाँ तो इसकी मुद्दत कम हुई है, पहले इससे बहुत ज्यादा वक्त के लिए लोग मुतकिफ हो जाते थे।
अच्छा जावेद साहब, ये बताइए कि एक और फिकही इस्तेलाह में एक कैटेगरी है, एक फ़र्ज आयन कहलाता है, एक फ़र्ज किफ़ाया कहलाता है, एतिकाफ अगर किसी महल्ले की मस्जिद में कोई भी शख्स मोतकिफ ना हो तो कोई प्रॉब्लम होती है या किसी एक को एतिकाफ करना ज़रूरी होता है महल्ले?
ये जो इस्तेलाहात आपने इस्तेमाल किए हमारे यहाँ फ़िकी इस्तेलाहात हैं, यानी हमारे फुकहा ने बात समझाने के लिए बाज़ इस्तेलाहात को वजूद बख्शा है, उनमें से एक ये इस्तेलाह भी है, तो वो ये समझते हैं कि चूंकि एक ऐसी इबादत है जो है तो नफल इबादत, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो अगर पूरे महल्ले ही में लोग मस्जिद को वीरान छोड़ देंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी,
ठीक,
तो उन्होंने ये कहा कि महल्ले के लोगों में से किसी न किसी को बैठ जाना चाहिए, ये इस्तलाह ना कुरान में बयान हुई है ना ये इस्तलाह किसी हदीस के अंदर बयान हुई है,
ठीक है, ये समझ, ये सिर्फ एक तरगीब देने के लिए,
तरगीब देने के लिए उन्होंने इख्तियार किया, मेरे नज़दीक सादा तरीके से बात बयान करनी चाहिए, नफल इबादत है, मुसलमानों को तरगीब देनी चाहिए, मेरा अपना एहसास ये है कि कोई ना कोई खुदा का बंदा जरूर इस तरफ रजू करता है, वरना इसका नतीजा तो ये होता है कि जैसे अब आपको कोई आदमी तलाश करना है तो वो जरूर मस्जिद में बैठ जाए ताकि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए,
और इससे
मैं ये समझता हूँ कि इससे इबादत की असल रूह वजरू हो जाती है,
और इससे फिर आप ही आप ये बात भी साबित हो जाती है चूंकि नफली इबादत है तो अगर एतिकाफ किसी वजह से टूट जाए, किसी आदमी को खत्म करना पड़े तो उसका कोई कफारा नहीं होगा?
नहीं, ऐसा नहीं होता, बस एतिकाफ खत्म हो गया, यानी कोई कफारा उसका मुकर्रर नहीं किया गया, अलबत्ता अगर आपने एतिकाफ की नियत इस तरह की कि ये आपने अपने ऊपर खुद लाजिम कर लिया, जैसे आप मन्नत मान लेते हैं, नजर मान लेते हैं, तो फिर तो जाहिर है कि अगर आपने दरमियान में तोड़ा है तो उसे पूरा करना होगा आपको,
और वो उसकी वजह असल में वो नजर का मानना,
नजर मानना,
वो एतिकाफ नहीं है,
वो तो आप किसी इबादत के बारे में भी तय कर लें, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं 2 नफल पढ़ूंगा और इसकी नजर आपने मान ली तो नजर पूरी करनी वाजिब है, वो फिर आपको पूरी करनी चाहिए, अल्लाह से एक वादा कर लिया आपने,
ठीक,
आपको नफल छोड़कर दरमियान में जाना पड़ गया,
ठीक,
तो फिर आप पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे,
हालांकि वो नफल इबादत है।
अच्छा, ये जिस तरह आपने शुरू में बताया था कि माबद या मस्जिद में हम एतिकाफ करते हैं क्योंकि एक इबादत का माहौल होता है, लेकिन खवातीन के लिए मसाजिद में आम तौर पर हम मसाजिद में तो वो नहीं जाती, उनका एतिकाफ भी मस्जिद में होगा या वो घर में भी कर सकती है?
इसका एहतमाम करना चाहिए, देखिए जहाँ तक अजवाजे मुताहरात का ताल्लुक है उनके बारे में हमें मालूम है कि वो मस्जिद में एतिकाफ में बैठती थी, हमारे शहर लाहौर में तो बारह मैंने ये देखा है कि अहले हदीस हजरात बड़ा एहतमाम करते हैं अपनी मस्जिदों में, उन्होंने खास हुजरे बना दिए हुए हैं, खास कमरे बना दिए हुए हैं जिनमें ख्वातीन के लिए एहतमाम होता है, तो करना चाहिए इसका एहतमाम, ख्वातीन का ताल्लुक मस्जिद से हमने मुनक़ते कर डाला है, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی، آپ دیکھیں فجر کی نماز پڑھتی، عشاء کی نماز پڑھتی، جمعہ جماعت میں تو خاص تاکید کے ساتھ ان سے کہا جاتا تھا کہ آئیں، اس لیے اعتکاف میں بھی ان کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، تاہم اگر کوئی ناگزیر صورت پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔
اچھا یہ آپ نے ابھی جو بات کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ بھی روایات تو ہمیں ملتی ہیں نا کہ عورتوں کے لیے گھر کے اندر عبادت کرنا بہتر ہے یا افضل ہے، اس طرح کی بھی تو روایات ملتی ہیں نا؟
دیکھیے دونوں چیزیں، وہ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت اگر باہر نکلنا پسند نہیں کرتی اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر عبادت کرے تو اللہ اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور پھر یہ کہ بعض اوقات آدمی کے اوپر ایک فضول سا شوق سوار ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ کسی مقصد سے باہر نکلیں۔ تو خواتین اگر باہر آتی ہیں مسجد میں اور وہ نماز پڑھتی ہیں تو بار بار حضور نے فرمایا کہ انہیں مت روکو، حضور کے زمانے میں خواتین آتی رہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں آتی رہیں، سیدنا عمر کے زمانے میں آتی رہیں، یہ تک ارشاد فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو،
مت روکو۔
تو مسجدوں کی اپنی ایک روحانی فضا ہوتی ہے، اس سے خواتین کا تعلق۔
اچھا ایک بات آپ نے ابھی بیان کی کہ مسجدوں میں یہ انتظام ہمیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن چونکہ نہیں ہے، عام طور پر نہیں ہے ہمارے ملک میں، تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتی؟
بالکل ایسا ہوگا کہ آپ کے لیے ایک مثالی بندوبست نہیں ہے کسی چیز کا، تو ہمارے دین میں یہ اصول موجود ہے اور فقہا نے اس کو ملحوظ رکھا ہے کہ آپ مثالی صورت میں کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کام ہی سے دستبردار ہو جائیں، اس کو کسی نہ کسی شبی صورت پہ انجام دیں۔ مثلا آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے اور آپ یہ عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ گویا اس چیز کی یاد کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہوگا، کیونکہ آپ معذور ہیں، آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، مسجد میں اہتمام نہیں کیا گیا، مسجد میں اہتمام میں یا آپ تو نہیں جا کے کر سکتے نا، وہ معاشرے کو کرنا ہے، محلے کو کرنا ہے، اور اگر وہ اہتمام نہیں ہے کسی جگہ پر اور کوئی خاتون اپنے گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ گئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ جمعے کو آپ دیکھ لیجیے، جمعے کے بارے میں اسلام کا قانون یہی ہے کہ ریاست کے ذمہ دار اس کا اہتمام کریں گے، لیکن اب چونکہ ریاست کے ذمہ دار مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کی نیابت میں پھر علماء یہ خدمت انجام دے دیتے ہیں۔